تیری کا ہار لے کر ہم کو بدہی بناتے ہیں، دیہ کا ہار لے کر ہم کو بدہی بناتے ہیں، دیہ میں آتے بدہی پن کا انوبھو بھی کراتے ہیں، دیہ میں آتے بدہی پن کا انوبھو بھی کراتے ہیں، آپ دیہی کراون ہار ہو، آپ دیہی کراون ہار ہو، جسے بھی دیہ سیتھی کہتے ہیں، دیہ میں آتے بدہی پن کا انوبھو بھی کراتے ہیں، انوبھو بھی کراتے ہیں، پریشان پشچاتاپ سے خود کو بچا کے رکھنا، باپ دادا کے آگا کی لکیر بھی رہنا، اب کہیں کرنے والے پریشان ہوتے ہیں، اب کہیں کرنے والے پریشان ہوتے ہیں، دیہ میں آتے بدہی پن کا انوبھو بھی کراتے ہیں، پراپتی سروپ ستھی میں سدا پریتی ہونا ہے، پراپتی سروپ ستھی میں سدا پریتی ہونا ہے، سہج سادھن پالو پاد اتنا ہی کرنا ہے، کیا کروں کیسے کروں گیتار سے چھڑاتے ہیں، کیا کروں کیسے کروں گیتار سے چھڑاتے ہیں، اسی لیے شیو بابا کو ستگرو بھی کہتے ہیں، اسی لیے شیو بابا کو ستگرو بھی کہتے ہیں، نراکاری یا شریر بھوا نراکاری شریر بھو، باپ دادا کہتے ہیں، آتے بدہی پن کا انوبھو بھی کراتے ہیں، انوبھو بھی کراتے ہیں،
ساکار شریشٹھ جیون کا برہما بابا ساکار رچنا، ساکار شریشٹھ جیون کا برہما ساکار رچنا، جگت کے آگے سکھانے کو برہما کی نیتی بنا، جگت کے آگے سکھلانے برہما ہی نیتی بنا، جتنا ہی جگت کا پیارا اتنا جگت سے نیارا، جتنا ہے جگت کا پیارا اتنا جگت سے نیارا، جگت پتا جگت گرو برہما بابا ہمارا، جگت پتا جگت گرو برہما بابا ہمارا، اسی لیے برہما بندے، اسی لیے برہما بندے جگ گرو بھی کہتے ہیں، تبھی تو آپ سبھی کو برہما کمار کماری کہتے ہیں، تبھی تو آپ سبھی کو برہما کمار کماری کہتے ہیں، ایک رستے میں ایک باپ کو فالو کرنے والے، کراون ہار بندے سے کرم کرانے والے، سہج پرساتھی بچے پھل پادر کرنے والے، باپ دادا کے سنہ کا رسپن دینے والے، پرسن چیت آتماؤں کو، پرسن چیت آتماؤں کو نمستے کرتے ہیں، آتے بدہی پن کا انوبھو بھی کراتے ہیں، انوبھو بھی کراتے ہیں، ہم ہیں قسمت والے ہم کو جو آپ کا سنگ ملا، हम है किस्मत वाले, हमको जो आप पसंद मिला। रूहानी रंग लगा कर आप करते हैं सबका भला, रूहानी रंग लगा कर आप करते हैं सबका भला। वाह वाह डॉक्टर सचिन भाई जी, वाह वाह डॉक्टर सचिन भाई जी, सब दिल से कहते जैसे न्यारे भी तेरी पंथा अनुभव भी कराते हैं, जैसे न्यारे भी तेरी पंथा अनुभव भी कराते हैं। आप दे ही करावन हार हो, आप दे ही करावन हार हो, जिस भी दे ही तीती कहते हैं, जिसने आप दे ही पंथा अनुभव भी कराते हैं, अनुभव भी कराते हैं, अनुभव भी कराते हैं।
ओम शांति। भारत के, ओम शांति। भारत के शास्त्रों में एक ऋषि पुत्र की कहानी है। उस ऋषि पुत्र का नाम था ऋष्य श्रृंग। उसके पिता ने बचपन से उसकी पालना ऐसे की थी कि वो इस संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बन जाए। बचपन से उसको इस तरह पाला था कि स्त्री क्या होती है ये उसे पता ही नहीं चलने दिया। स्त्री वार्ता, स्त्री दर्शन, जंगलों में दूर सुनसान वनों में आश्रम में उस बालक की पालना की, और वो बालक अति तेजस्वी था, ब्रह्मचर्य के योज और तेज से आपूरित वो युवा हुआ। दिनचर्या ऐसी थी कि जिसमें तपस्या के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, और उस पिता को ये नशा था कि मेरा पुत्र संसार के महान ऋषियों में एक हो, मेरा पुत्र ब्रह्मचारियों में सर्वोपरि हो, जहां उनका आश्रम था उससे कुछ दूर एक शहर था, उस शहर में एक बार अकाल पड़ा। राजा ने सभी ज्योतिषियों को बुलाया और उन सभी ज्योतिषियों ने कहा यह अकाल दूर हो सकता है केवल और केवल यदि ऋषि श्रृंग इस शहर में आए, और ये तो जैसे असंभव था क्योंकि ये बात सर्वविदित थी कि एक तपस्वी कुमार है और उसके पिता ने उसे केवल और केवल जंगलों में ही रखा है। बचपन से इस तरह का आचरण है उसका कि जिसमें तपस्या के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ भी करके इस युवक को शहर में लाना था। तो वहां के मंत्रियों ने और राजा ने मिलकर एक युक्ति रची। उस आश्रम में कुछ युवकों को भेजा, पर वास्तव में वो युवक नहीं थे, वो स्त्रियां थी युवकों के वेश में, वेश बदल कर। और जब ऋष्य श्रृंग के पिता कहीं बाहर गए थे, तब वो सारे युवक जो वास्तव में स्त्रियां थी उस आश्रम के बाहर खेलने लगे, और ये जो तपस्वी था जैसे ही उसने उन युवकों को खेलते देखा उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि खेल नाम का कोई प्रकार उसे पता ही नहीं था, और उसको उनके हाव भाव देखकर आकर्षण होने लगा। उसने आंख खोली और देखा ये कौन लड़के हैं जो यहाँ खेल रहे। वो उनके पास गया और उसने कहा आप लोग क्या कर रहे हो। उन युवकों ने कहा कि हम यहाँ खेल खेल रहे, तुम भी हमारे साथ खेलो। और उनके हाथ पकड़कर वो भी खेलने लगे। और जैसे ही उनके हाथों का स्पर्श हुआ, मन में हलचल हुई, क्योंकि वो युवक नहीं थे, वो स्त्रिया थी। और वो खेलने लगा उनके साथ। उन युवकों ने कहा कि हमने कुछ भोजन भी लाया है, तुम ये भोजन भी खाओ। और उसने पहली बार वो स्वादिष्ट भोजन खाया। बचपन से लेकर अब तक केवल कंदमूल फल और जंगल का रूखा सूखा खाता था, पर आज उसने जो भोजन खाया वो राजसी भोजन था, वो राजमहलों में बनाया हुआ भोजन था। और बहुत समय खेल कर वो सारे युवक लौट गए। ऋषि श्रृंग शाम को तपस्या में बैठा, परंतु आज तपस्या नहीं कर पाया। क्यों? कुछ हो रहा है अंदर, कोई सूक्ष्म हलचल हुई अंदर, उसे भी नहीं समझ रहा ये हो क्या रहा है। वो स्पर्श उसे बार बार याद आ रहा है। शाम को जब पिता आते हैं तो देखते हैं मेरा पुत्र तो विचलित है आज, ऐसा बेचैन उसको आज तक नहीं देखा, ऐसा क्या हो गया। वो अपने पुत्र को बुलाते हैं, कहते हैं ऋषि श्रृंग बताओ सारी वार्ता, बताओ आज सारे दिन पर क्या हुआ, क्या कैसे दिन बिताया तुमने आज। ऋषि श्रृंग कहता है कि मैं तपस्या में बैठा था, अचानक मुझे आवाज आई, मैंने आंख खोली, देखा कुछ लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं और मैं भी उनके साथ खेलने लगा, और फिर उन्होंने मुझे भोजन भी खिलाया। पिता ने ध्यान लगाया, अंतर्दृष्टि से देखा वो लोग कौन थे, और अपने बेटे को हिदायत दी, आज्ञा दी कि कल से या आज के बाद अगर कोई भी यहां खेलने आए उनके साथ बिल्कुल देखना भी नहीं, उनके साथ खेलना भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात। वो कहता है ठीक है। दूसरे दिन फिर पिता चले जाते हैं, परंतु आज वहां कोई आया नहीं है, परंतु बेचैनी है। जो भाव कल उठे थे फिर उठने लगे। बीच में नदी है, शहर उस ओर। उन लड़कों ने कहा था हम उस शहर से आए हैं, तुम भी हमारे शहर आना। पिता ने तो कहा था उनकी तरफ देखना भी मत, अगर वो आते हैं तो। आज वो आए नहीं है, पर नदी में छलांग लगाई, तैरते तैरते वहां पहुंच गए। भविष्य वक्ताओं ने कहा था वो आएगा तभी अकाल दूर होगा, और वो प्रवेश करता है, और जैसे आता है अकाल तो दूर हो जाता है, परंतु राजा को वो पसंद आ जाता है, और राजा उसको वहीं रख लेता है और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह कर देता है, और कहानी यहां पर पूरी होती है। निष्कर्ष क्या निकला, क्या सीखा इससे? क्या सीखा? शास्त्रों में कहानी सुनाई जाती है, चाहे कोई कितना भी ब्रह्मचारी हो उसे सावधान रहना है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य का अहंकार आत्मा को गिरा देता है। जरा सी अवज्ञा, सुबह की अव्यक्त वाणी, परेशान और अभी अभी गीत में भी सुना, हल्दर भाई ने गीत गाया ना, पश्चाताप। केवल तुमको दो ही स्थिति में रहना है, अगर तीसरी स्थिति में आए तो वो तीसरी स्थिति गिरावट की स्थिति है, वो तीसरी स्थिति पराई स्थिति है। उस स्थिति में अगर गए तो नीचे आ जाओगे, और फिर परेशान होंगे, और फिर पश्चाताप होगा, और ये पश्चाताप ऐसा होगा कि फिर इससे निकलना, इससे उभरना, इससे उठना असंभव सा है। कुमारों से मुलाकात, सुबह की अव्यक्त वाणी। कुमार अर्थात क्या कर दिया है कुमारों ने, तलाक, किसको तलाक दिया? माया को, कमजोरी को जो तलाक देते हैं, कमजोरी को जो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, वो है कुमार। कुमार अर्थात समर्थ, ऐसे जो समर्थ कुमार है वो बाप को प्रिय है, और समर्थ अर्थात कुमारों का सामर्थ्य ही है पवित्रता। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात कुमारों से, किसी वाणी में कहा बाबा ने, कुमारों की सबसे बड़ी संपत्ति ब्रह्मचर्य है, और ये ब्रह्मचर्य स्वप्न में संकल्प में भी भंग ना हो, और यदि हो रहा है तो ब्राह्मण जीवन में अंदर ही अंदर सूक्ष्म पश्चाताप रहेगा, और ये पश्चाताप अंदर ही अंदर आत्मा को खाते रहेगा। ऊपर से सब कुछ हो रहा है, अमृत वेला हो रहा है, मुरली हो रही है, सारे दिन भर सेवाएं हो रही है, परंतु अंदर ही अंदर एक सूक्ष्म पश्चाताप, सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म रूप से परेशान है, आत्मग्लानी से पीड़ित है। इसलिए पवित्रता सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। सेवा करते करते पवित्रता को दांव पे नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ छिन जाए, प्यूरिटी हमारी इंटैक्ट अखंड रहे। तो आज बाबा ने अव्यक्तवाणी कुमारों से मुलाकात की है और तीन बातें कुमारों को कही। सबसे पहली, कुमार अर्थात समर्थ कुमार, कुमार अर्थात जिन्होंने कमजोरी को तलाक दिया है, और जब तलाक दिया जाता है, पति अपनी पत्नी को तलाक देता है, उसके बाद में व्यवहार कैसा होता है? द्वारका भाई फोन वगैरह करता है उसको? तलाक अर्थात क्या? उसके तरफ देखता तक नहीं। एक तलाक अर्थात राजीव भाई तलाक दे दिया, उसके बाद क्या करता है? हाँ, उसको याद भी नहीं करता। उसके बाद उसकी जितनी यादें हैं उसको क्या कर देता है? सारे गिफ्ट्स, सारी यादें, सब कुछ बस, और क्या करता है? ऐसी वो हर चीज जो उसकी याद दिलाए उसको नष्ट कर देता है, और क्या करता है? तलाक देने के बाद व्यक्ति फोन पर बातें, फोन नंबर डिलीट, ब्लॉक लिस्ट, और वो सामने आए तो इधर मुंह दिखाएंगे जैसे हम जानते ही नहीं उसको। हमारे जीवन में भी हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो याद, हर वो मेमोरी जो हमें विकारों की याद दिलाती, जिससे मन कमजोर हो जाता है, वो याद आते ही मन में हलचल होने लगती है, वो हर वस्तु को क्या कर दो? डिलीट कर दो, ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, पुट इन स्पैम। जैसे हमारा उससे अब कोई संबंध नहीं रहा, तलाक, डिवोर्स, सारे संबंध विच्छिन्न, खत्म, नवजीवन है ये समर्थ जीवन, शक्तिशाली जीवन, और वो सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है इस संसार में जो किसी पर भी निर्भर नहीं है। उसके जीवन में कोई खुशी की बात होती है, उसे कोई इच्छा नहीं है किसी को फोन कर बताने की। उसके जीवन में दुख आता है, किसी को फोन कर बताने की, सहारा लेने की, मदद लेने की कोई इच्छा नहीं है, या आवश्यकता भी नहीं। उदासी आती है, खुद ही उदासी से बाहर निकलता है, ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्रेम के आधार से। इससे बात और उससे बात जो जितना यहां वहां बात करने में लगा है, सोचता है बिचारी इसके समस्या दूर कर दूं, उसकी मदद कर दूं, मदद करने जाएंगे और खुद ही फंसेंगे। हमारी अनासक्त स्थिति ही संसार की सभी आत्माओं के लिए मदद है। हमारा वैराग ही संसार का श्रृंगार है, इसलिए बाबा ने कुमारों से कहा, बाप को वो कुमार पसंद है जो समर्थ है, जो शक्तिशाली है, जो संसार से परे रहते हैं ऊपर। दूसरा कुमार अर्थात जिनके कर्म की रेखा स्पष्ट है और जो दूसरों के कर्म की रेखा भी स्पष्ट करते हैं। हम अपने आप को अगर झांक के देखें तो उसमें कहीं कोई भी आत्मग्लानी की बात ना हो। अंदर झांक कर देखे और आत्मग्लानी की बात कुमारों में केवल एक ही, किसी न किसी आत्मा से संबंध, घनिष्ठ संबंध, फैमिलियरिटी, क्लोज कॉन्टैक्ट। इसके लिए जो चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का पतन ना हो, वो रोज अमृत वेला बाबा से संपूर्ण पवित्रता का वरदान है। एक तो अपने आप से प्रतिज्ञा और एक बाबा से प्रतिज्ञा, दो चीजें। सबके बीच रहते हुए, हजारों आत्माओं के संपर्क में आते हुए भी, जैसे कंचा होता है, उसको रात भर पानी में डाल के रखो, सुबह कुछ फर्क पड़ा उसको? कुछ नहीं। उस तरह इस संसार में अनासक्त वैरागी, पिछली इस हफ्ते की मुरलियों में कितनी बार आया है, तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, किसी भी संबंध से नहीं, किसी को दोस्त बना के रखा है, किसी को गुरु, किसी को मां, किसी को बहन, किसी को साथी, सेवा का साथी, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, शायद वो प्रेम नहीं मोह हो। जिसे हमने प्रेम की संज्ञा दी है वो शायद छुपी हुई वासना का ही बाहरी स्वरूप हो। जिसे हम समझ रहे हैं उसका मैं कल्याण कर रहा हूं, वो कल्याण नहीं, दोनों को गिराना है। तो दूसरी बात, कुमार अर्थात जिनके कर्म की रेखा स्पष्ट है, अखंड है। और तीसरी बात, आज सुबह की साकार अव्यक्त वाणी, कुमार अर्थात याद और सेवा। याद से क्या होगा हरि भाई? शक्तिशाली। और सेवा से क्या होगा? खजानों से भरेंगे। इसके लिए जब तक ब्राह्मण जीवन है, सेवा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने देखा है वो सारे कुमार, वो सारी आत्माएं जिन्होंने ये कहा कि हमको केवल तपस्या करनी है, हमें छुट्टी दे दो दादी, वो सब मनोरुग्ण हो गए। जिनको केवल तपस्या करनी थी, सेवाओं को जिन्होंने छोड़ दिया। इसके लिए जब तक ब्राह्मण जीवन, चाहे यहां रह रहे हैं या भविष्य में कहीं और जा रहे हैं, सेवाओं को छोड़ना नहीं, अंत तक सेवा करते रहना, क्योंकि सेवा अर्थात व्यस्तता। और जो आत्माएं व्यस्त रहती है, बिजी रहती है, उनके पास माया नहीं आती है। माया सबसे पहले उनके पास आती है जो जरा भी खाली रहते हैं। इसके लिए अपनी सेवाओं को तो जैसे है वैसे ही रखना है, परंतु सेवाओं को छोड़कर जो समय है उसमें हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा समय यहां वहां की बातों में जा रहा है? क्या हमारा समय इधर उधर फोन करने में जा रहा है? क्या हमारा समय सोशल मीडिया पर जा रहा है? हम कर क्या रहे हैं? स्वयं स्वयं को देखना, ये मार्ग एकांकी मार्ग है। ऊपर से सब दिख रहे साथ साथ है, पर यहां कोई किसी का नहीं। एक बाप के अतिरिक्त हमारा सगा इस संसार में कोई भी नहीं। एक वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है। तो याद और सेवा, सेवा क्या करेगी? खजानों से भरेगी। और याद क्या करेगी? शक्तिशाली बनाएगी। याद अर्थात सबसे पहले इसमें फिर से चेक करना है, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो, एक दिन भी। यदि अमृत वेला रोज मिस हो रहा है, यदि अमृत वेला रोज हो रहा है परंतु शक्तिशाली नहीं हो रहा है, यदि अमृत वेला रोज हो रहा है परंतु नींद में गुजर रहा है, यदि अमृत वेला रोज हो रहा है परंतु साधारण है, व्यर्थ संकल्प उसमें चल रहे हैं, तो वो शक्तिशाली याद तो हुई ही नहीं। हमें याद है बहुत समय पहले अस्पताल में एक भाई भर्ती था, जिसने सारे जीवन भर बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि उसे और कोई समय था ही नहीं उसके पास, केवल सेवा, सुबह से लेकर रात तक केवल भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। और जब एक बार बीमार पड़ गया और अस्पताल में था, दो दिन कोई सेवाधारी था, फिर सेवाधारी कहीं छुट्टी पर चला गया, उसके बाद उसके पास कोई सेवाधारी नहीं था। इतना दुखी हो गया, इतना उदास हो गया कि मेरे पास कोई भी सेवाधारी नहीं है, मैं क्या करूं। इतना समय से मैंने इतनी सेवा की परंतु आज मेरा ये हाल। और हमने उसके मुख से उस कुमार को, अनन्य कुमार को, जिसकी 30 साल की सेवा थी समर्पित जीवन की, उसको कहते सुना, आज मेरी पत्नी होती और बच्चे होते तो वो मेरी सेवा करते, ऐसे संकल्प उसके मन में आने लगे। और इसी दुख में उसने शरीर छोड़ा है। क्यों ऐसा हुआ? क्या उसने सेवा कम की थी? सेवा तो उसने अथक की थी, दिन रात की थी, पर केवल सेवा ही की थी, उसके लिए उसके पास योग के लिए समय नहीं था। अगर योग किया भी तो वो केवल, क्योंकि सब कर रहे हैं, जाकर बैठना, ये योग नहीं। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन, वो कितना किया। कुछ दिन पहले साकार मुरली आई थी, बाबा ने कहा झुंड में, एकांत में जो चिंतन हो सकता है वो झुंड में नहीं हो सकता। संगठन की अपनी शक्ति है, संगठन के साथ तो रहना है, परंतु फिर भी इस संगठन से एकांत के पल चुराने हैं, और उस एकांत के पलों में ज्ञान का अंत अध्ययन करना, ज्ञान का चिंतन करना है। क्योंकि जब तक ज्ञान का चिंतन नहीं, बुद्धि व्यर्थ में जाएगी, और व्यर्थ में आकर्षण है, एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ को आकर्षित करता है, खींचता है, उसमें आकर्षण है जबरदस्त। और एक बार व्यर्थ प्रवेश कर गया कि उसकी गहराई में जाने की इच्छा होती है। एक अव्यक्त मुरली है, बाबा ने उसमें कहा जितना समाचार दिलचस्प होगा उतना उसमें व्यर्थ होगा। और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, इंटरेस्टिंग न्यूज। और जितना हम सुनेंगे इंटरेस्टिंग न्यूज उतना उसमें डूबते जाएंगे। इसलिए 3 बातें आज की मुरली में कुमारों से बाबा ने कहा है। कुमार अर्थात समर्थ, समर्थ अर्थात जिसने माया को, कमजोरी को तलाक दे दिया। एक लिस्ट बनानी है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है, सबसे बड़ी कमजोरी ऐसी वो कौन सी बात है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा संबंध है, ऐसी कौन सी याद है, ऐसी कौन सी चीज है, या ऐसा कौन सा भोग है कि जो आते ही मन में हलचल होने लगती है, उसको हटा दो। और हटाने के लिए एक संकल्प काफी है, एक शक्तिशाली बीज। संकल्प में बहुत शक्ति है। एक कवि एक बगीचे में जाता है और बगीचे में देखता है इतने सारे फूल खिले हुए हैं, सब फूल अलग अलग है, सबकी सुगंध अलग अलग है। वो पूछता है माली से कि कितना आश्चर्य है कि जमीन एक ही है, सूरज एक ही है, हवाएं एक सी चल रही है, पर हर पौधे में अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग सुगंध, ऐसा क्यों? वो माली कहता है क्योंकि बीज की वजह से। बीज में जो है वो वृक्ष में आएगा, वो झाड़ में आएगा, अर्थात उस बीज का संकल्प कितना शक्तिशाली है कि इतने बड़े आकाश को एक तरफ रख दिया उस बीज ने, कि मेरा फूल ऐसा ही होगा, लाल ही होगा, सफेद ही होगा। बीज के संकल्प की ये शक्ति है कि वो फूल ऐसा बना। जिसने ऐसा संकल्प कर लिया वो अपने आप परिवर्तित होगी, अपने आप परिस्थितियां वैसी ही आएगी। जो जहां सेवा करता है, जिस भी डिपार्टमेंट में सेवा करता है, जहां पर भी है, लक्ष्य ये रखना है। बाबा ने होमवर्क दिया है, नीचे शांतिवन में मुरली चली, 12-12 फरिश्ता और निराकारी स्थिति, उसका आज फिर से वर्णन किया। जैसे ही समय मिले अंदर चले जाए, बजाय इसके कि बैठकर किसी के साथ लंबी बातें, यहां वहां की बातें, और जितना हो सके एकांत में और अकेले रहने का प्रयत्न करना, उसी में शक्ति है। तो कुमार अर्थात समर्थ, कुमार अर्थात जिन्होंने कमजोरी को तलाक दिया है, कुमार अर्थात जो बाप को प्यारे हैं, कुमार अर्थात जिनके कर्मों की रेखा स्पष्ट है, कुमार अर्थात जो दूसरों के कर्मों की रेखा स्पष्ट करते हैं, कुमार अर्थात जो याद और सेवा में बिजी है, और कोई काम ही नहीं। तीन बातें। तो मुरली की शुरुआत करते हैं। क्या कहा बाबा ने शुरुआत में? मानी भाई क्या कहा बाबा ने? किस लिए आए हैं बाबा? स्नेह का रिस्पॉन्ड करने। कितनी अच्छी बात है, हम यदि किसी से प्यार करें और वो रिस्पॉन्ड ही ना करें तो कैसा लगता है? यदि हम किसी को ग्रीटिंग दें, कुछ सौगात दें, और वो सौगात को स्वीकार ही ना करे, फेंक दे, बुरा लगेगा ना? भगवान ने हमारे प्रेम को स्वीकार किया और उस स्वीकार्य का प्रूफ है वो मिलने आया। बाबा ने कहा बाप तुमसे मिलने आया है, क्यों? रिस्पॉन्ड, तुमने प्यार किया ना इसलिए मिलने आया, नहीं तो नहीं आता। ये सबसे पहली पॉइंट, प्रेम से पूछना है हमारा प्यार बाबा से कैसा है, कितना है। भगवान से प्यार मिक्स तो नहीं है, किसी देहधारी की याद तो नहीं है बीच में? जैसे ही कोई देहधारी आया, ये तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। परमात्मा प्रेम बहुत ऊंची अवस्था है। दूसरी बात, बाप कैसा है? विदेही, और वो आया है किस लिए? हमें विदेही बनाने के लिए। और विदेही का क्या अर्थ सुनाया बाबा ने? गीत में भी सुना, आत्मा करण करावनहार और शरीर करणहार। अव्यक्त चेतना की ऊंची 8 अवस्थाएं। सबसे पहला, इसको नोट करके रखना है मन में या डायरी में, सबसे पहली अवस्था या स्थिति, 8 स्थितियां है। पहली स्थिति का नाम है आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात जिसमें आत्मा अपने 7 गुणों में स्थित है, मैं प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये जो स्थितियां है इसको कहते हैं पहला आत्माभिमानी स्थिति। जो बातें हम बता रहे हैं ये किसी एक मुरली में नहीं है, ढेर सारी मुरलियों का सार। दूसरा, अशरीरी अवस्था, ये क्या है? वैसे बाबा ने इन सारी स्थितियों को कहीं कहीं पर एक ही रूप में प्रयोग किया है कि एक ही अवस्था है, शरीर से अलग वाली, परंतु कुछ कुछ मुरलियों में एक एक स्थिति का अलग अलग वर्णन किया। सबसे पहली स्थिति बताई आत्माभिमानी, अर्थात जिसमें आत्मा अपने 7 स्वरूपों में स्थित है। दूसरी अशरीरी, अशरीरी अर्थात कैसे अंतर करेंगे? अशरीरी अर्थात जहां शरीर नहीं, वो स्थिति इस संसार की स्थिति नहीं है, वो केवल और केवल परमधाम की स्थिति है या तो सूक्ष्म वतन की स्थिति है। सूक्ष्म वतन से भी ज्यादा वो केवल परमधाम की स्थिति है। आत्मा जब परमधाम में है जहां शरीर है ही नहीं, वो स्थिति का नाम है अशरीरी स्थिति, या फिर सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर, परंतु इस संसार की वो स्थिति नहीं है। ये दूसरी। तीसरी स्थिति अव्यक्त स्थिति, वो क्या है? सारे व्यक्त भाव से परे, व्यक्त हिलना डुलना, बात करना बोलना, अभी हम जो कर रहे हैं ये सब व्यक्त भाव, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त स्थिति अर्थात सारे व्यक्त भावनाओं से परे, जो स्थिति अमृत वेला होती है, किसी को बोलने की इच्छा नहीं होती है, सभी जैसे अव्यक्त स्थिति में खड़े हैं उस समय। ये तीसरी। चौथी स्थिति बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति केवल परम धाम की स्थिति है, जहां आत्मा और परमात्मा बस, वो भी बीज मैं भी बीज, वो भी बिंदु मैं भी बिंदु, बिंदु योग बीज योग, वो परम धाम की स्थिति। पांचवी कंबाइंड स्थिति। ये स्थिति भी परम धाम की ही स्थिति है, जिसमें मैं आत्मा और वो क्या हो गए, दोनों एक। जैसा वो है वैसा मैं हूं, वो संपूर्ण पवित्रता का सागर है, मैं भी पवित्रता का सागर हूं, उसमें और उसमें कोई अंतर ही नहीं है, हम दोनों एक हैं। बाइबल कहती है माय फादर एंड आई आर वन, वो मेरा पिता और मैं एक ही हूं, ये अवस्था। ये पांचवी। उसके बाद में है देही अभिमानी स्थिति। कंफ्यूजन चालू हो गए हैं इनसे। देही अभिमानी अर्थात इस पर भी एक मुरली है। 18th जनवरी 1969 जो अव्यक्त मुरलियां चली थी, फर्स्ट मुरली 21st की, उसमें थोड़ा वर्णन है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करा रही हूं, यह है देही अभिमानी स्थिति। और उसके बाद है विदेही स्थिति, जिसका वर्णन आज की मुरली में। विदेही अर्थात मैं आत्मा करण करावनहार और इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं, ये शरीर करणहार है, ये भान, ये है विदेही स्थिति। और उसके बाद है फरिश्ता स्थिति। आत्मा दो शरीरों में स्थित है, एक स्थूल एक सूक्ष्म, ऐसी आठ स्थितियां हैं। और आज की मुरली में बाबा ने दो का होमवर्क दिया है, फॉलो फादर, अर्थात इन दो स्थितियों में, इन दो अवस्थाओं में स्थित रहना। कौन कौन सी? एक तो आठवीं फरिश्ता और बीच की जो बताई विदेही। वैसे इनको इसके साथ भी जोड़ दिया है, निराकार भी वही है, जैसे हमने कहा अलग अलग नहीं है। कुछ मुरलियों में विदेही को ही निराकार और निराकार को ही अशरीरी भी कहा, पर फिर भी ये अंतर कुछ कुछ मुरलियों में है। अब आते हैं मेन मुरली पर, जिसमें बाबा ने ये जो काम दिया है कि तुमको बस सारे दिन भर इन दो स्थितियों में रहना है, एक तो बीज रूप स्थिति, एक तो निराकार स्थिति, एक तो बिंदु रूप स्थिति, विदेही स्थिति कहो अशरीर स्थिति कहो, ये वो हर सारी स्थितियां हैं जो शरीर से हमको अलग करे, इसी स्थिति में ज्यादा समय रहना। जैसे शरीर याद आते ही शरीर का सब कुछ याद आने लगता है, उसी तरह आत्मा समझते ही आत्मा का सब कुछ याद आने लगता है। इसलिए बार बार सारे दिन भर जैसे ही समय मिले अपने बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना है। और दूसरी अवस्था है फरिश्ता। चलते फिरते जैसे ये शरीर जो है, ये शरीर है नहीं, ये लाइट का शरीर है, मैं आत्मा लाइट के शरीर में, हर चीज यहां लाइट की बनी हुई है, ये फोटो भी लाइट की है, ये दीवारें भी लाइट की है, ये सारे जो दिख रहे दी आर द बींग्स ऑफ लाइट, ये सब लाइट ही लाइट है। इसी अवस्था में रहना, फरिश्ता स्थिति। ये बगीचा लाइट, ये घास लाइट, ये हॉस्पिटल लाइट, ये मधुबन लाइट, ये आकाश लाइट, ये झाड़ लाइट, सब लाइट ही लाइट दिखाई देगा। एक फरिश्ता स्थिति और दूसरा है बिंदु। बिंदु का अभ्यास कैसे करें? वो भी सारे दिन भर, वो भी जब बहुत व्यस्त है, चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे हैं ये करो वो करो इधर जाओ उधर जाओ, जब बहुत सारी सेवा करनी है, जब समय कम है और उसमें ज्यादा सेवाएं करनी है, और जहां फोन कॉल आ रहे हैं बार बार, उस अवस्था में जैसे ही समय मिले इसमें त्राटक करना है। त्राटक क्या होता है? त्राटक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान, ज्योति के ऊपर ध्यान। भक्ति मार्ग में, सन्यास मार्ग में त्राटक सिखाया जाता है। क्या होता है वो? दिया रखते हैं, मोमबत्ती रखते हैं और अपलक उसको देखते रहते हैं, या सूर्य को, या चंद्रमा को, या सितारे को, या आकाश को, या परछाई को। किसी को भी। हमारा जो राजयोग है एक रीति से वो भी एक प्रकार का त्राटक है। कौन सा वाला त्राटक? बिंदु योग है। तो सारे दिन भर जब भी समय मिले एक पॉइंट पर बुद्धि केंद्रित कर देनी। जैसे ही एक पॉइंट पर बिंदु केंद्रित बुद्धि केंद्रित होती है, बाकी सब है ही नहीं, वहां कुछ भी नहीं। या एक पॉइंट, पेन अगर हाथ में है, एक पॉइंट बना लेना और बस दो मिनट एक सेकंड के लिए उस केंद्र पर ऐसे केंद्रित हो जाना कि यही शिव बाबा और मैं उसको देख रहा हूं, उससे संपूर्ण शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है, या फिर मैं ऐसा ही बिंदु हूं। क्योंकि होमवर्क यही है, 24 बार करने को बोला है बाबा, अगर दिन में नहीं होता है तो रात को सोने से पहले, नींद बाद में करना, नींद भी करो पर बोलो नींद भी करो पर करके सोना। और ये दिन भर में इतना सारा अभ्यास कर देना, जैसे बैठे हैं कहीं पर थोड़े देर के लिए भी बैठे, सब लोग हैं बैठे हुए, जैसे कोई किचन में है, कोई फार्मेसी में है, कोई ओपीडी में है, कोई किस डिपार्टमेंट में, कोई लाइब्रेरी में है, जैसे ही टाइम मिला एक बिंदु निर्माण करना है कहीं पर भी, और या जो भी आसपास कोई भी बिंदु दिख रहा है या कोई लाइट दिख रहा है, और उसमें बिल्कुल बुद्धि केंद्रित। जैसे ये फर्श है, इसके ये वाला बीच का पॉइंट, जैसे ये माइक है, इसका ये नट, बात करते करते एकदम वहां केंद्रित, और ये सोच लेना है कि यही शिव बाबा है या यही बिंदु है और मुझ में किरणें आ रही है। जरूरी नहीं है कि केवल हम ट्रांसलाइट में वो बिंदु को ही देखें तभी योग लगेगा, वो तो हमने क्रिया निर्माण किया हुआ, वो प्रतीक मात्र है, वो केवल प्रतीक है, सिंबोलिज्म। उसको पकड़ के नहीं बैठना है कि मैं वहां जाऊंगा तब वो बिंदु को योग लगाऊंगा। बिंदु तो हम कहीं पर भी निर्माण कर सकते हैं, दिन भर किसी का बैच देखा, बस उस बैच पर ही केंद्रित कर देना है एक सेकंड के, कि उससे किरणें इधर आ रही है, शक्ति आ रही है, पवित्रता आ रही है। सारे दिन भर पवित्रता पवित्रता को पवित्रता का चिंतन रहेगा तो रात में कभी भी दुस्वप्न नहीं होगा। स्वप्न जो होंगे वो भी इतने शुद्ध होंगे, इतने पवित्र होंगे, और नींद धीरे धीरे कम होती जाएगी। योगी को बहुत कम नींद की आवश्यकता है, योगी को बहुत कम भोजन की आवश्यकता है, शरीर में एक अजीब सा हल्कापन रहेगा, देखने की इच्छा ही नहीं है शरीरों को, या देखते हुए शरीर दिख ही नहीं रहे, केवल आत्मा ही नजर आ रही। ऐसी शक्तिशाली आंतरिक स्थिति अर्थात कुमार। और जिनका समय सारे दिन भर व्यर्थ जा रहा है, वो चाहे ऊपर से कुछ भी दिखाए, कितना भी ढोंग करे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, आत्मा जब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं करती तब तक खुश हो ही नहीं सकती। चाहे ऊपर से कितना भी दिखा ले, कितनी भी सेवाएं कर ले, कितने भी फोटो आ जाए, इधर गुलदस्ता उधर गुलदस्ता, इसको राखी उसको राखी, ये सेंटर वो सेंटर, यहां की ओपनिंग वहां की ओपनिंग, हमने ये किया हमने वो किया, कितना भी कुछ कर ले, आत्मा कभी भी सुखी नहीं हो सकती। आत्मा का सुख केवल और केवल अशरीरी अवस्था में, आत्मा का सुख केवल और केवल तीव्र पुरुषार्थ में है, आत्मा का सुख उस अमृत वेला में है, आत्मा का सुख उस परमात्मा प्रेम प्रेम में खो जाने में है। जब ऐसी तक जब तक वो अवस्था नहीं है तब तक आत्मा दुखी ही रहेगी, और जो दुखी नहीं है वो ढोंगी है। ब्रह्मचारी को शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य भंग होने पर वैसा दुख होता है जैसा किसी स्त्री को उसके पति के मर जाने पर होता है, वैसा दुख होना चाहिए उसे। उसके स्वप्न इतने पवित्र होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो वो पश्चाताप करता है दिन भर, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, होना नहीं चाहिए था। जरा भी दृष्टि और वृत्ति में हलचल हुई, बाबा ने कहा रात को देखो, मुखड़ा देख ले प्राणी क्या हुआ। तो ये आठ अवस्था है, उन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था का अभ्यास किया जा सकता है, सीधा परम धाम में हूं मैं। कभी कभी जरूरी नहीं है कि अमृत वेला योग यहां से चालू करूं कि मैं आत्मा हूं, फिर ये शरीर नहीं हूं, फिर शरीर को छोड़ा, फिर सूक्ष्म वतन, बाबा से सारे संबंध, और फिर परम धाम। सीधा योग ही चालू करो कहां से, परम धाम से। कि मैं बिंदु और वो भी बिंदु, सीधा बिंदु से ही योग, वहां से शुरुआत योग की, शरीर का कोई चिंतन नहीं, सीधा वहीं पर जाकर जैसे बाबा के कमरे में बैठे सीधा बिंदु को ही देखे कि वो बिंदु और मैं भी बिंदु, बस बाकी कोई चिंतन नहीं, वहीं से चालू, वो संपूर्ण पवित्र, मैं भी पवित्र, पवित्रता का सागर, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, या ये भी प्रयोग किया जा सकता है, वो सागर है, मैं आत्मा छलांग लगा रही हूं उठते ही, और उसकी लेयर से पवित्रता की मैं डूब रही हूं उस सागर में, धीरे 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 धीरे, ऐसा योग। ये बात है। फिर बाबा ने ये दो अवस्थाएं, तीसरी अवस्था में तुमको जाना ही नहीं है। कौन सी अवस्था है वो तीसरी, कौन सी अवस्था है? देह, देह भाव, व्यक्ति भाव, व्यक्त भाव, ये गिरावट की अवस्था है, ये पराई अवस्था है, इसमें तुमको जाना ही नहीं है, ये आज्ञा है। अगर कोई दूसरे देश में चला जाए बिना परमिशन के, उदाहरण दिया बाबा ने, तो क्या होता है? उत्तर छोड़ दिया और कहा कि परेशान होंगे और पश्चाताप होंगे, और वो परेशानी एक दिन की नहीं होगी, लंबा समय चलेगी परेशानी। एक बार आत्मा ऊपर से नीचे आ गई तो जैसे बॉल होता है उसको नीचे फेंको, वो कहां जाता है? सीढ़ियों से उसको फेंको, ऊपर आता है कि? एक बार नीचे गया कि नीचे की यात्रा चालू हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में गिरती कला, बहुत सारी कलाएं हैं ब्राह्मण जीवन में, एक है ठहरती कला, जिसमें पुरुषार्थी ठहर गया है, 10 साल पहले जहां थे वहीं आज भी, 15 साल पहले जहां थे वही पुरुषार्थ की स्थिति आज भी है, सेम अमृत वेला, उसमें कोई नवीनता नहीं, उसमें कोई योग के प्रयोग नहीं, उसमें कोई अनुभव नहीं, नेमीनाथ जैसे सब कर रहे, डर के मारे करो, नहीं तो ब्राह्मण कहते हैं कि तुमको माया ने खा लिया इस डर से। ठहरती कला एक है, चलती कला, चल रहे हैं, एक है दौड़ती कला, दौड़ना चालू, एक है चढ़ती कला, एक है उड़ती कला सबसे ऊंची, और एक है गिरती, फिसलती, क्रैश लैंडिंग। इसके पहले भी कभी सुनाया था, एक तपस्वी था योगी, वो जंगल में अकेला तपस्या करता था, इतनी तपस्या करता था कि धीरे धीरे उसे सिद्धियां प्राप्त होने लगी, और उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त होने लगी कि उड़ने लगा आकाश में, और पर उसने सोचा ये सिद्धि लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए अपने आप को गुप्त रखा। फिर भी एक दिन एक गृहस्थी ने देख ही लिया, और जैसे ही गृहस्थी देखते ऐसी कुछ बातें वो फैल जाती है, लोग आने लगे दर्शन करने के लिए, जो भी आता कहता है हमको भी देखना है, उड़ के दिखाओ हमको भी देखना है। तो वो क्या करता बेचारे, कभी कभी दिखा देता था उड़ के, खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा ऐसा तपस्वी तो हमारे महल में होना चाहिए, वहां क्या कर रहा है जंगल में, ऐसा योगी पुरुष तो यहां होना चाहिए, कुछ सलाह भी उससे लेते रहेंगे राज्य के बारे में। तो योगी के पास जाते कहते हमारे राज्य में चलो, कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जीवन सादा जीवन है, वन में रहता हूं, मुझे वो सब नहीं चाहिए, राजसी थाट बाट। वो कहता है राजसी थाट बाट नहीं देंगे तुमको, तुम्हारे लिए महल के अंदर ही एक जंगल तैयार कर देंगे कैंपस में उसी में कुटिया बनाकर वहीं रहो। तो उसे बात तो थोड़ी जचती है, ठीक है यही तो चाहिए, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कहता है ओके। तो आ जाता है जंगलों में, राजा के उपवन में कुटिया बना के वहां रहने लगता है। एक दिन राजा आता है मुझे भी देखना है, उड़ के दिखाओ ठीक है। और उसको रोज कुछ दासी आती है तो भोजन रख कर जाती है उसके लिए, और एक दिन जब उड़ने लगता है वो, तो उस दिन राजा की कन्या आ जाती है, राजा की पुत्री भोजन लेकर, और जैसे उड़ते हुए नीचे आ रहा होता है और राजा की कन्या को देखता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, और जैसे उसको देखता है एकदम क्रैश लैंडिंग, अ मूवमेंट ऑफ लस्ट एंड फॉल, एक क्षण का काम और सारी सिद्धियां उसकी खत्म। फिर उसके बाद वो कभी भी उड़ नहीं सकता, इतनी तपस्या से जो उसने कमाया था लास, एक विकारी दृष्टि और खत्म। तो गिरावट की अवस्था, पराई अवस्था, व्यक्त भाव, व्यक्ति भाव, देह भाव, इस भाव में तुमको आना ही नहीं है। बाप की आज्ञा ही नहीं है तुमको, अगर आज्ञा, अगर ऐसा किया तो फिर पश्चाताप होगा और दंड मिलेगा, परेशान हो जाओगे। और ब्राह्मण जीवन में दंड क्या है जीतू भाई? ब्राह्मण जीवन में दंड क्या है? या कोई धर्मराज खड़ा है वहां पर दंडे लेकर कुशल? ब्राह्मण जीवन में दंड क्या है? कोई बाहर बाद में मिलने वाला है दंड? स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अमृत वेला न उठ पाना ही दंड है। अमृत वेला उठकर भी योग न लगना ही दंड है। अमृत वेला उठकर भी प्रभु प्रेम का अनुभव ना होना ही दंड है। सारा दिन बिना मुरली पड़े चले जाना, बिना मुरली चिंतन किए पूरा दिन गुजर गया, यही दंड है। सारे दिन भर ज्ञान की, ज्ञान का चिंतन ही नहीं हो रहा है। चिंतन करने जाओ तो बुद्धि में व्यर्थ आता है। सारे दिन भर संसार की आत्माओं का आकर्षण होता है, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, इसको मैसेज करो, उसको मैसेज करो। सारे दिन भर ये देखू, वो वीडियो, ये वीडियो, यही दंड है। और शरीर अवस्था का कोई आकर्षण ही नहीं है, यही दंड है। सारा दिन भर ये खाऊं कि वो खाऊं, भोजन में बुद्धि डूबी हुई है, यही दंड है। उनको तो शरीर से बाहर निकल जाना है। स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज के, राजीव भाई, दंडे है। हमारी स्थिति की कीमत है 1 करोड़, संबंधों की कीमत है 1 लाख और सेवा की 1000। किसी ने सेवा जो कि फोर्थ सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट सब्जेक्ट बना के रखा है। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कहा छोड़ना ही नहीं अंत तक, कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ छोड़ दो, पर स्थिति सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पर व्यक्ति। बाबा ने 3 सर्टिफिकेट लेने को कहा है, व्यक्ति और तीसरा सेवा। व्यक्ति ना जाए, सेवा चली जाए चलेगा, व्यक्ति रूठ के ना चला जाए। किसी ने कोई गलती कर दी, हमने उसको इतना डांटा कि वो सेवा छोड़कर ही चलेगा या यज्ञ छोड़ के ही चला गया, तो क्या कहेंगे? सेंटर की कोई माता है, उसको उसने गलती कर ली, बहन जी ने उसको डांटा, दूसरे दिन से बंद। व्यक्ति चलेगा, पैसा तो आ जाएगा, सेवा आ जाएगी, जो नुकसान हुआ वो भरा जा सकता है, पर व्यक्ति अगर रूठ के चला गया या ज्ञान ही छोड़ दिया वो कभी नहीं आएगा। इसके लिए व्यक्ति सेवाओं से अधिक महत्वपूर्ण, और तीसरे नंबर पर सेवा है। तो ये 3 बातें। तो 2 अवस्थाएं जिनका सारे दिन भर अभ्यास करना है, बीच बीच में जहां बिंदु दिखे, या बिंदु निर्माण करना और बिंदु योग, त्राटक बिंदु योग, बीज योग, मैं बीज हूं वो बीज, मैं बिंदु वो बिंदु, बिंदु से किरणें आ रही है, वो ज्योति मैं ज्योति, ज्योति योग, बीज योग, ज्योति योग, बिंदु योग, सूर्य योग, चंद्र योग, कुछ भी नाम दो, पहाड़ योग वो स्वीट का पहाड़ है, सागर योग वो समुद्र है, और स्थित हो जाना उस स्थिति में। उसके बाद में बाबा ने ब्रह्मा को ही क्यों चुना गया इसकी बात बताई, क्यों चुना गया, क्या है मुरली में ये ब्रह्मा ही क्यों? क्योंकि क्योंकि पहली आत्मा है जो संपूर्ण पवित्र बनी। मुरली में और क्या है? 84 जन्म लेने वाली यही आत्मा है, और मुरली में क्या है? हाँ, कर्म बंधन को, कर्म बंधनों से मुक्त हुए, कर्म संबंधों को निभाया, देह में रहते विदेही बने, और तन मन धन, तन को तन के बंधनों से मुक्त, मन को मन की लगन में लगाया, और धन का एक नया पैसा, हर एक नया पैसा यज्ञ में लगाया। हमारे पास जो पैसे हैं वो सारे पैसे बाबा की सेवा में लगे, या कोई ना कोई ऐसे कार्य में लगे जिससे किसी का कल्याण हो। हमारा मन जो है, बाबा ने कहा लगन की अगन में मगन। हमारा ये जो शरीर है इसके बस 2 ही काम है। कौन से काम है द्वारका भाई? 1 सेवा और दूसरा तपस्या, बस ये शरीर हमको भोग विलास के लिए दिया हुआ नहीं है कि उसमें उतना खाली भोग विलास की उसको आदत डाल दो। वो जो ऋषि पुत्र की कहानी सुनाई उसमें उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी उस भोजन को खाने से, किसके हाथ का हम भोजन खा रहे हैं, उसने किस मन से उसको बनाया है, और या हमारे खाते समय कैसी अवस्था है, क्या स्वाद के लिए खा रहे हैं या ये समझ के खा रहे हैं कि ये भोजन से मेरे अंदर शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न होंगे, पवित्रता के संकल्प उत्पन्न होंगे, या केवल स्वाद के लिए खा रहे। स्वाद के लिए खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, अधिक खाया जाएगा। योगी का भोजन सूक्ष्म होता है। ये ब्रह्मा के लिए तन मन धन, देह में रहते विदेही, कर्म संबंधों से मुक्त, कर्म बंधनों को निभाया। फिर ब्रह्मा के लिए और दो संज्ञाओं की उपमा दी है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, वैसे ज्यादा कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु का ज्यादा गायन है, पर अब ये कहने की बात सुन, चिंतन की बात है, कृष्ण भी कौन है, वो ब्रह्मा की ही आत्मा है, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु भी सही है, क्योंकि है तो ब्रह्मा की ही आत्मा। राम के लिए गुरु नहीं कहा जाता है, कृष्ण के लिए गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा है भक्ति मार्ग में। आज की मुरली में है कि ब्रह्मा के लिए वंदन जगत गुरु। शिव बाबा सदगुरु है, परंतु जो दूसरों को सिखाता है वो भी गुरु है, तो ये भी गुरु है जिसने हजारों का जीवन बनाया, लाखों करोड़ों का जीवन जगाया। हाँ वो तो है ही है, गुरु ही ब्रह्मा, यहाँ तो ब्रह्मा ही गुरु। एक तो ये, दूसरा पिता। बाबा ने कहा शंकर विष्णु के लिए पिता नहीं है, इसके लिए पिता कहते हैं रजा पिता। तो ये ब्रह्मा की बातें थी। उसके बाद में गुलजार दादी के लिए बाबा ने कहा कि गुलजार दादी को ही क्यों चुना गया। नहीं, पिछले जन्म से भी ज्यादा इसी जन्म का था कुछ। क्या था? बाबा ने कहा उन एकांत के स्थान में, उस एकांत में, उस तपस्या के स्थान में, सिंध हैदराबाद की बातें, बाबा ने क्या देखा इस आत्मा में, इनोसेंट, सरल स्वभाव, इनोसेंट नेचर, निष्पाप, निष्कलंक, निर्मल स्वभाव है। ऐसी आत्माओं में भगवान, ऐसी बाबा ने तभी वरदान दे दिया कि तब तुम साथी और सहयोगी थी, तब तुम साथ थी और साथी थी, अब भी साथी और सहयोगी, यही वरदान काम आया, इसलिए इसको चुना। भगवान चाहता था तो बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी चुन सकता था, हाईली एजुकेटेड क्यों नहीं चुना उनको, इनको क्यों चुना? हाँ, बाबा को ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, सिंपल हृदय जिसका है, जैसे रामायण में दिखाया हुआ है। आजकल रामायण ज्यादा देख रहे लोग कम से कम उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा बुद्धि धर्म की तरफ तो जा रही है। दिखाया है रामायण में श्री राम जी वन में जाते हैं, सीता को देखते हैं और देखते ही रहते दोनों एक दूसरे को, प्रेम, प्राइवेट बात है, और आश्रम में वापस आते गुरु के और अपने गुरु को बता देते हैं ये सारी बातें, इतनी प्राइवेट बात, ऐसा कोई बताता है क्या? गुप्त रखेंगे अगर कोई होगा तो। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, तुलसीदास ने लिखा है राम का स्वभाव कैसा है, सरल स्वभाव है, छुअत छल नाही, उसको छल छूता तक नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये जो बच्ची थी इसका स्वभाव कैसा था, इनोसेंट, बहुत निरागस, निष्पाप, इसके लिए इसमें आए बाबा, इसके लिए इसको, इस रथ को चुना। तकदीर की क्या कर दिया था, क्या शब्द है, तकदीर की लकीर खींच दी, तकदीर की लकीर खींच दी, इसलिए इसको चुना। क्रिश्चियन धर्म में 19वीं शताब्दी में एक बहुत अच्छी कहानी कहो या एक संत का वर्णन है। एक कन्या होती है बेनेडेट नाम की, एकदम गरीब परिवार में जन्म, उसके माँ बाप एकदम गरीब, कुछ भी नहीं है, उसके इतने सारे भाई बहन है, खाने को कुछ नहीं है। और वो बेनेडेट, एक बार उसको हमेशा दमा की शिकायत रहती है, बचपन से ही वो बीमार रहती है, हमेशा सांस फूलते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। एक बार की बात है, ऐसा दिखाया कि वो जाती है अपने बहन, दो बहनों के साथ, या मैं उसकी जो सखिया होती है, और थोड़ा सी नदी होती है हल्की सी, और वहां एक गुफा टाइप होती है, तो वो दोनों तो चली जाती है, इसको यहीं छोड़ देती है। वो कहती है मैं भी आती हूं, अपना मोजा निकालती है और जाने को देख करती है तो वो जो गुफा होती है वहां पर उसको एक आकृति दिखाई देती है, एक महिला। क्रिश्चियन धर्म की कहानी है मदर मेरी जैसी दिखती है वो, पर मदर मेरी है ऐसा नहीं, उसको वो दिखती है सफेद सफेद। और फिर वो आके कहती है, उन दोनों को बताती है, एकदम से वो ध्यान मग्न हो जाती है, जैसे उसी को दिखता है, बाकी किसी को ही नहीं दिखता। वो दो कन्याएं होती है उनको नहीं दिखता है। वो घर पे आके बताती है कि मुझे वैसा दिखा। उसकी माँ कहती है भूल जाओ बिल्कुल, इसको बंद करो, किसी को बताना मत ऐसा, ऐसे डिवाइन विजन वगैरह दिखा तो लोग इधर हंसी उड़ाएंगे। दूसरे दिन फिर जाती है, फिर उसको वो दिखती है वो प्रतिमा। वो एक्चुअली मदर मेरी की प्रतिमा होती है, वो मूर्ति, मूर्ति जैसा आकृति दिखती है, सफेद सफेद और ऐसा किए हुए। और उसको, उससे वो बात करती है, फिर घर पे आके बताती है और कहती है कि मुझे ये दिखा। आश्चर्य होता है, लोग फैल जाती है बात कि इसको कुछ कुछ दिखने लगा है, ये तो अनपढ़ है, गवार है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो एजुकेटेड नहीं है, और इसको ये विजन्स कहाँ से हो रहे हैं। वहां पे बड़े बड़े पादरी लोग हैं, बड़े बड़े चर्च स्थापन हुए हुए हैं। ये खबर इतनी फैल जाती है कि न्यूज़पेपर में आ जाती है, सारे चर्च में हलचल हो जाती है, ये कौन है, ये सब ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है। मेडिकल की टीम आती है और उसको साइकेट्रिक पेशेंट करके घोषित भी करती है कि ये ऐसी है, ये तुम्हारा फैब्रिकेशन से। पर वो इतनी भोली होती है, इतनी निरागस होती है, कहती मुझे वो दिखती है और उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा। और सारे लोग वहां इकट्ठे होते हैं और वो फिर से वहां खड़ी होती है, फिर से वो आकृति आती है और उसको कहती है सामने बढ़। सामने बढ़ती है, खड्डा खोद, वो खड्डा खोदती है, वहां एकदम गंदा पानी होती है। वो आकृति उसको कहती है पानी को पी जा। वो पानी पीती है, सब लोग नाक बंद करते हैं, अरे ये क्या कर रही है, ये तो पागल है। और पत्ता खा, वो पत्ता खाती है, फिर वापस आती है और फिर एकदम से जैसे होश में आती है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या किया। वो अवस्था में उसने क्या किया उसको ही पता नहीं। और वो जो गड्ढा खोदती है और उसमें से जो पानी निकलता है, वो पानी जैसे बहने लगता है फिर लोगों की बीमारियां ठीक होने लगती है उस पानी से। आज भी वो जगह है और आज तो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, लॉर्डेस कहते हैं उसको फ्रांस में, बहुत ज्यादा हजारों लोग उसमें आते हैं वो स्थान पर। फिर वो पानी बहने लगता है, फिर जैसे जैसे पता चलता है पादरियों को, चर्च वालों को, कि वो तो क्यूरेटिव पावर है उसमें, उसमें लोग ठीक हो रहे हैं। एक व्यक्ति होता है जो अंधा होता है जन्म से, उसको दिखता नहीं, वो जाता है वो पानी को मुंह में लगाता है उसको आंखें आ जाती है। एक माँ होती है जिसका बच्चा बस अब मरने वाला ही होता है, सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि मरेगा, ये जिंदा नहीं रहेगा, वो माँ आती है, वो बच्चे को 15 मिनट उस आइसी कोल्ड बर्फ वाले पानी में डुबो के रखती है, वो बच्चा ठीक हो जाता है। आश्चर्य होता है सबको। फिर उसके ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं होती है कि ये ढोंग कर रही है, ये नाटक कर रही है। डॉक्टर्स की टीम आती है, कहते हैं वो पानी तो पहले से ही उसमें, हमने उसका बायोकेमिकल एग्जामिनेशन किया, उसमें फॉस्फोरस है, उसमें ये है, उसमें वो है, तो वो तो ठीक तो होना ही था, इसका कुछ भी नहीं है। पर वो इतना बढ़ते जाता है उसका कि वो आकृति उसे रोज दिखती है और वो आकृति कहती है यहाँ चर्च बनाओ, पर वो कोई नहीं मानता है। फिर वो एक जो एक फादर होते हैं उसको लगता है ये जो कन्या ये झूठ क्यों बोलेगी। उसकी टेस्ट की जाती है, सारे पादरी बैठते हैं और उसको सामने बिठाते, कहते तुमको कुछ दिखता है, वो कहती हाँ। और कुछ पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले उसको झूठा बयान लिखवाते हैं कि नहीं ये तुम्हारा मन का भ्रम है। और वो इतनी सिंपल होती है, इतनी सिंपल होती है कि जो उसने देखा वैसा ही बताती है, कोई उसमें ये नहीं। उसको एक प्रश्न पूछा जाते हैं, आज की मुरली में आ रहे हैं कि केवल तुमको ही क्यों दिखता है, हम सबको क्यों नहीं दिखता। अगर वो मदर मैरी है, वर्जिन मैरी है, उसको पूछो उसका नाम क्या है, तो कहती है आई एम इमैकुलेट कंसेप्शन। इमैकुलेट अर्थात अत्यंत पवित्र। जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्र जन्म, किसी पुरुष की उसमें हस्तक्षेप नहीं है। वर्जिन इसको कहते हैं, वर्जिन मैरी, तो इमैकुलेट कंसेप्शन। तो कहते हैं उसको पूछा जाता है एक प्रश्न कि केवल तुमको ही क्यों दिखता है, बाकी को क्यों नहीं दिखता, और तुम तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हो। वो कहती है शायद इसीलिए मुझे दिखता है, शायद इसीलिए मुझे दिखता है, क्योंकि भगवान को वो पसंद है जिनका हृदय बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। और फिर दिखाए 35 साल की उम्र में तो ये शरीर छोड़ देती है, बाद में लोग उसको समझ पाते हैं कि ये कितनी महान है, कि उसको ही क्यों दिखा। और वो जगह तीर्थ बन गया है, आज तक लोग जाते हैं वहां पे, आज भी ठीक हो रहे हैं वहां पर, लॉर्डेस में फ्रांस। फिर उसको सेंट की पदवी दी जाती है बाद में, 1932 में। बाद में कहने का भाव, भगवान को कौन पसंद है, सच्ची दिल वाले, जो पवित्र हृदय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट वाले पसंद नहीं है, जो षड्यंत्र करते रहते हैं निरंतर, षड्यंत्र पर षड्यंत्र, षड्यंत्र पर षड्यंत्र, इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इसको कैसे गिराऊं, उसको कैसे गिराऊं, इसने मेरे खिलाफ ऐसा किया था, इसके खिलाफ मैं लोगों को कैसे भड़काऊं, इसकी ग्लानी कैसे करूं, उसकी ग्लानी कैसे, इसके पीछे कंप्लेंट कैसे लिख के दूं कि इसने हमारे साथ ये किया। झूठी बातें जो बनाते हैं, जिनके हृदय में अस्वच्छता है, ऐसे बाबा को पसंद नहीं है बिल्कुल, रिजेक्टेड। बाबा कहेंगे हटो यहां से मेरे सामने। बाबा को कौन पसंद है? बहुत शुद्ध है, जो बहुत पवित्र है। इसलिए बाबा ने कहा बाप ने इसको चुना। तो ये बात थी। तो ऐसी पूरी मुरली में ये सारी बातें थी। टीचर से मुलाकात, क्या कहा टीचर्स को? टीचर्स अर्थात दो पार्टी है। सबसे पहली पार्टी टीचर अर्थात जो समर्थ है और जो दूसरों को भी, जो खुद आगे बढ़ती है दूसरों को भी बढ़ाती है। वास्तव में दूसरों को आगे वही बढ़ा सकता है जो अंदर से, जिसकी प्रगति हो रही है अध्यात्म। और आध्यात्मिक प्रगति की परिभाषा पवित्र बहन, बहन आत्मा, बहन पवित्र भाई, आत्मा की प्रगति अर्थात संतोष भाई, कब कहेंगे कि मेरी प्रगति हो रही है? जब अपने विकार को डायग्नोस कर सको। डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोसिस करता है ना, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये इस बीमारी की वजह से, उस बीमारी की वजह से। और अगर डायग्नोसिस में देरी हो, निदान में, तो ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट हो। हम सोच रहे हैं मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है, वो है मोह। विकारों का डायग्नोसिस करना, ये मोह नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। हम सोच रहे ये तो मेरी सेवा है, ये मेरा सेवा साथी है, तोड़ निभाना पड़ता है, इसको फोन करना बहुत जरूरी है। वो फोन करना जरूरी नहीं है, वो क्या है? मोह है। अपने मोह को अगर प्रेम की संज्ञा दी है तो व्याकरण को बदलने की आवश्यकता है। संज्ञा ये गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अपने ऊपर जितना हो सके सख्त से सख्त पहरा रखना। ये जो तुम सोच रहे हो ना, जिसको तुम प्रकाश सोचते हो वो अंधकार है, जिसको तुमने ज्ञान कहा है वो अज्ञान है, जिसको तुमने प्रेम कहा है वो मोह है, जिसको तुमने शुभ भावना कहा है वो शुद्ध वासना है, जिसको तुम तोड़ निभाना कह रहे हो वो तोड़ निभाने के पीछे आसक्ति है। और ब्रह्मचारी अर्थात सभी आसक्तियों से पार जाए, उसे किसी की याद नहीं। अगर 10 दिन किसी कमरे में बंद कर दिया जाए विदाउट मोबाइल, विदाउट लैपटॉप, विदाउट ऑनलाइन, किसी को मिस ना करे, किसी की याद नहीं आई, किसी को फोन करने की इच्छा नहीं है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, तो भी स्थिर रहे ऐसी जगह। हमको याद है एक जगह भट्टी थी कुमारों की, बहुत सारे कुमार आए थे, रात रात भर ट्रैवल करके आए थे बाइक से 200 किलोमीटर, पूरा रात भर सोए नहीं थे कोई, जर्नी करके सुबह पहुंचे थे, और सुबह अमृत वेला सारे थे 4 बजे। और जैसे अमृत वेला पूरा हुआ कमेंट्री हुई, और कमेंट्री के तुरंत बाद हमने कहा अमृत वेले के बाद तुरंत सोना अर्थात की कमाई चट, और सारे कुमार अब बस सोने ही जाने वाले थे और जैसे सुना ओहो, संकल्प कर लिया अब नहीं सोएंगे। 2 दिन भट्टी थी, और वो भट्टी ऐसे स्थान पर थी कि वहां नेट ही नहीं था, जंगल में थी वो जगह, जैसे शहर से बहुत दूर थी, जहां पे नेट था ही नहीं, सबके मोबाइल अपने आप बंद हो गए, और सबको इतना पावरफुल अनुभव हुआ 2 दिन इसके वजह से, भट्टी की वजह से नहीं, फोन बंद की वजह से। तो किसी पर भी डिपेंडेंट ना, किसी भी व्यक्ति पर हमारा डिपेंडेंस ना हो। और एक दूसरी बात, अपने आप को ऐसा रखना है कि दूसरा हमारी तरफ आकर्षित ना हो, अपने आप को ऐसा रखना है कि दूसरा हमारी तरफ आकर्षित ना हो। अगर वो हो रहा है तो जरूर हमने कुछ तो है जो उसको आकर्षित कर रहा है, उसको ढक देना, नहीं तो आकर्षण होता है। और उसका, हमारा तो मोह नहीं, पर उनका यदि हमें मोह हो गया तो भी तो फंस गए, और उनके मोह का पोषण हम ना करें। बात करके इसके लिए जब भी पता चले कि कोई व्यक्ति हमारे पर मोहित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई आत्मा, कोई भी, कोई बहन या कोई भी, फर्स्ट प्रिंसिपल डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, नो कंसर्न, डिटैच्ड, अनासक्त, वैराग्य, डिस्कनेक्ट, नहीं तो पतन होगा। तो टीचर अर्थात खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। फिर टीचर अर्थात जो सेवाओं में जिनके पास निमित्त भाव है, सेवाएं बहुत करनी है परंतु कभी भी उस सेवा का अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, मैंने किया, मैं करता हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, अरे आज तुम करते हो, तुम हट जाओ ना, दूसरा जो आएगा तुमसे भी ज्यादा अच्छा करेगा, ये तुम्हारा भ्रम है, जो ये सोच रहे हो कि मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये मैं ही यहां का इनडिस्पेंसिबल, मेरे अगर मैं यहां से चला जाऊं तो देखता हूं कैसे करते हैं, ये सोचना अहंकार। हमको तो सुदेश बहन ने क्लास में कहा था अपने आप को नल समझना है, पानी की टंकी ऊपर है, हम नल है, अब पानी इस नल से आ रहा है और नल को अहंकार कि मैं पानी दे रहा हूं, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम नल है, आज पानी इस नल से आ रहा है, इसको बंद करेंगे दूसरे नल से आएगा। कईयों में अपनी कलाओं का अहंकार है, अपनी स्किल्स का अहंकार है, अगर मैं, अच्छा मेरी बात नहीं मानी, जाओ तुम करो, मैं नहीं जाता, देख लो तुमको जैसे करना, ये भी अहंकार। हमें तो भाग्य मिला है जो निमित्त बनाया, वो चाहता था तो अच्छे अच्छे लोग हैं संसार में हमसे, क्या हमसे योग्य लोगों की कमी है संसार में, उसको उसने हमको चुना, यह हमारा भाग्य है। तो जरा भी किसी भी बात में, बाबा ने कहा टीचर अर्थात जो निमित्त समझे, उसके बाद में टीचर अर्थात बाप समान, टीचर अर्थात त्यागी, त्याग का भाग्य है, जितना ज्यादा त्याग उतना ज्यादा, इसलिए बाप दादा हर्षित होते हैं, बाप दादा हिम्मत देखकर हर्षित होते, त्याग देखकर हर्षित होते, और हमारा सूक्ष्म त्याग हो और हर दिन एक सूक्ष्म चीज जिसमें हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति है उसका त्याग करते जाना। हमको याद है हमारा MBBS में एक मित्र था, उसकी माँ जो थी जब भी कहीं जाती थी तीर्थ स्थान में एक चीज छोड़ के आती थी, हरिद्वार गई जिलेबी छोड़ दी, हर साल में एक ही जगह जाती थी और जहां जाती थी जो चीज उसको सबसे ज्यादा पसंद थी वो चीज छोड़ के आ जाती, वाराणसी गई वो दूसरी एक चीज छोड़ के आ गई। हमें अपनी सूक्ष्म आसक्तियां जो है अंदर से उनको एक एक करके टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को खत्म करते जाए, ताकि हम ऐसी अवस्था में रहा कि ताकि कुछ भी ना मिले तो भी हम स्थिर रहे। कुमार अर्थात स्वतंत्र, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना व्यक्ति चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना इस संसार की कोई बात चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक बाप के अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। तो टीचर अर्थात त्यागी, टीचर अर्थात बाप समान, टीचर अर्थात हिम्मतवान, टीचर अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाने वाली, ये पहला ग्रुप था। दूसरा टीचर अर्थात संतुष्ट बनी, संतुष्ट बनी अर्थात तीन प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं, कौन कौन से, स्वयं तो स्वयं को हम दे देंगे 100 marks, दूसरा बाप, बाप भी दे देगा, प्रॉब्लम कहां पर है, दूसरे नहीं देते, बस सर्टिफिकेट साथियों से मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, साथियों ने प्रतिज्ञा कर रखी है इनको देंगे ही नहीं तो द्वारका भाई क्या करेंगे, जेपी भाई दूसरों ने प्रतिज्ञा ही करके रखी है, हम इनको कुछ भी हो जाए सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पर बाबा ने कहा सबको सर्टिफिकेट देंगे। अभी अभी जो शांतिवन में मुरली चली, परिवार के बारे में कितना कहा बाबा ने, यही वो प्रभु परिवार है, ये परमात्मा परिवार है, ये भगवान का परिवार है, इसमें ही तो सब कुछ होगा, विघ्न आएंगे, कोई गलती करेगा सब कुछ करेगा, इस परिवार में ही सब कुछ होगा, इस परिवार में ही तो तुमको अच्छा लड़ोल रहना है, इस परिवार में ही शुभ भावना शुभ कामना हरेक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, किसी के प्रति षड्यंत्र का भावना, किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका हिसाब है, वो उस समय परवश है, क्या करेगा बेचारा, ड्रामा में वो गलती करना वो भी नून है, इसलिए वो गलती कर रहा है, इसमें भी वो एक्यूरेट है, अपनी गलती में भी वो एक्यूरेट है, इसलिए। तो टीचर से मुलाकात की और बाबा ने कहा निमित्त अर्थात जैसे झुका हुआ वृक्ष, अहंकार नहीं है उसमें, मैं ही कर सकता हूं, मैं मैं ही हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझ में ये आता है, मुझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, जो कलाएं हमारे पास है वो दूसरों को सिखानी है। कई लोगों का ऐसा है कि अपनी कलाएं अपने पास ही रखते हैं कुंडली मारकर, क्योंकि अगर मैंने दूसरों को सिखा दी तो वो आगे चला जाएगा या फिर मेरा महत्व कम हो जाएगा। जितना हमको आता है सबको सिखाते जाए, ताकि हम हो ना हो वो काम चालू रहेगा, सेवाएं चालू रहेंगी। अपनी इसमें बैठ के बैठ नहीं जाना है कि मैं दूसरों को नहीं सिखाऊंगा। आयुर्वेद जो है भारत में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, शायद एक ही यही कारण था कि कुछ सारे बहुत सारे गुरुओं ने पूरी विद्या अपने शिष्यों को नहीं सिखाई, कुछ कुछ राज अपने तक ही रखने, और फिर घटते घटते आज ये अवस्था हो गई कि सारे राज नहीं है। इसलिए जितना हमको आता है वो दूसरों को सिखाने का भी भाव, अगर वो सीखने की इच्छा रखे तो, जबरदस्ती नहीं सिखाना है किसको, अगर उसकी सीखने की इच्छा है तो। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी ये मुरली में कि ब्रह्मा का जीवन क्या है, कंप्यूटर। जैसे कोई भी प्रश्न होता है तो कहां ढूंढते हो, कंप्यूटर में, तब जीवन में कोई भी प्रश्न हो तो ब्रह्मा के जीवन में ढूंढो। इसलिए जिन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, उसका अध्ययन करते जाए। कुमार जीवन में रोज कुछ पढ़ना है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमने देखा है कई कुमार वो अवस्था में है कि जहां पढ़ाई लिखाई छूट गई, पढ़ाई छूटी गई है। हम पढ़ाई लिखाई का अर्थ मुरली पढ़ने से नहीं कर रहे, ज्ञान की बात है, ज्ञान की किताब है। जगदीश भाई की इतनी सारी किताबें, ज्ञानामृत है, मैगजीन्स है, लोगों के अनुभव है, ज्ञान के क्लासेस है, रोज एक क्लास तो सुनना ही है। ऐसा लक्ष्य रखो कि मुझे दादी प्रकाशमणि, गुलजार दादी और जानकी दादी, इन तीनों के क्लासेस पूरे करने, एक एक क्लास चालू करो। यहां से हॉस्पिटल तक जाते हो ईयरफोन लगाओ, क्लास ड्यूटी। हम एक सेंटर पर गए थे, एक बहन किचन में सेवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी पर एक कान में ईयरफोन लगा हुआ, एक ही कान में, एक कान से इधर का सब कुछ कर रही थी, सुनना ये करना, पर इधर से बिल्कुल व्यर्थ नहीं, इधर से क्लास चालू था दादी का, एक क्लास से क्लास, और वो अंदर डाल के रखा। हमने कहा क्या कर रहे हो, कहते हैं क्लास सुन, क्योंकि वो जो काम थे उसमें ज्यादा बुद्धि का काम नहीं है, रोज रोज कर रहे, सब एक्सपर्ट है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम वेस्ट है। गुलजार दादी से चालू करो, एक मास में जितनी क्लासेस है दादी की सारी पहले तो डाउनलोड करो मोबाइल में, और लक्ष्य रखो कि मुझे एक क्लास रोज सुननी। वो पूरा हुआ, जानकी दादी, प्रकाश मेरी दादी, क्योंकि इन आत्माओं की क्लासेस सुनना अर्थात उनके शब्दों को सुनना, अर्थात हम उनके संपर्क में आ रहे, उस आत्मा जैसे मेरे समीप है, यहां पर उनके शब्द उनकी वाणी में प्यूरिटी की पावर है, आत्मा की जो गंदगी है ना वो निकल जाएगी, एक ऐसा पॉइंट टच हो जाएगा अंदर ही अंदर, ऐसा टच होगा कि कपाट खुल जाएंगे। इतने 10 साल से 15 साल से जो एक समस्या है जिससे जूझ रहे हैं, संघर्ष चालू है, उससे समझ ही नहीं रहा है, ये संबंध इतना उलझ गया है किसी आत्मा के साथ कि उसको समझ ही नहीं रहा है कैसे निकले, उससे निकल जाएंगे वो एक पॉइंट से। तो सारी मुरली में इतनी बातें थी, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, बाप से प्यार, जो बाप रिस्पॉन्ड देगा तो हमारा प्यार उससे सबसे ज्यादा। फिर दो अवस्थाएं, सारे दिन भर अभ्यास करना, बिंदु परिष्ठा, बिंदु परिष्ठा, बिंदु परिष्ठा। तीसरी बात, जो 8 अवस्थाएं बताई अलग अलग अलग, कभी बीज कभी कंबाइंड, कंबाइंड स्थिति का यहां पर भी अनुभव किया जा सकता है कि मैं और बाबा कंबाइंड हूं, वो मेरे ऊपर छत्र छाया है, कंबाइंड है, तो अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव। उसके बाद बताया गिरावट वाली अवस्था में नहीं जाना, आज्ञा ही नहीं है बाबा की, अपने डायरी में लिख के रखना है बाप ने मना किया है, बाबा ने मना किया है इस बात के लिए, नो, नो मीन्स नो, सोने से पहले नो इंटरनेट, नो यूट्यूब, इंटरनेट पे जाओ भी तो कोई लक्ष्य से जाओ, क्लास सुनना है, क्लास सुन के पूरी हो गई वापस आ जाना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, भटकना नहीं है, नहीं तो ये देखोगे वो देखोगे। इतनी ब्राह्मण आत्मा अर्थात उसको राजनीति में कोई ज्यादा रस नहीं, ब्राह्मण आत्मा अर्थात उसे फिल्मों में कोई रस नहीं है, ब्राह्मण आत्मा अर्थात संसार में की बातों में उसको रस नहीं है। हाँ, जनरल नॉलेज है, पर उसके डिटेल में हमको जाने की आवश्यकता नहीं, व्यर्थ है सर, व्यर्थ का अंबार लगा है संसार में। अगर इन सब बातों में जाएंगे तो तपस्या कब होगी, मुरली कब चिंतन करोगे, एक मुरली को कितनी बार पढ़ा आज सामने सारे दिन भर, अगर कोई प्रश्न पूछे कितनी बार चिंतन किया, कितना टाइम दिया, अपने आप को देखो हमारे मन में आज सारे दिन भर क्या चल रहा था, व्यर्थ ही चल रहा था। तो ये एक बात। फिर उसके बाद में ब्रह्मा दर्पण है, कंप्यूटर है, उसके जीवन को देखना है। प्रश्न इधर आया, महात्मा गांधी अपने पास गीता रखते थे, जब भी जीवन में कोई समस्या आ जाती थी पॉलिटिकल, जाते थे गीता खोलते थे, जो पहला पेज आया खोलते ही उस पे उनको उत्तर मिल जाता। वैसा ही है ब्रह्मा का जीवन कहानी की जो किताब है, डायरी अपने बेड के पास ही रख देना, जब भी कोई प्रॉब्लम आई उसको खोलना, जो फर्स्ट पेज में जो दिखा पैराग्राफ उतना पढ़ना, शायद उसी में उत्तर होगा हमारे प्रश्न, मिल जाएगा उत्तर। तो कंप्यूटर है, उसके लिए कहा वो गुरु है, गाइड है, उससे सीखना है। फिर ब्रह्मा को क्यों निमित्त बनाया वो बात बताई, और गुलजार दादी की जो बात बताई, हृदय में छल कपट कभी नहीं था इस बच्ची की, इनोसेंट नेचर था, इसीलिए बाबा ने उसको चुना। फिर टीचर्स, दूसरों को आगे बढ़ाना है, त्याग, बाप समान, निमित्त भाव, कुमार अर्थात समर्थ, कुमार अर्थात कर्मों की रेखा स्पष्ट, और कुमार अर्थात जो याद और सेवा में बीती रहे। तो ऐसी आज की मुरली है, ये उसकी थोड़ी सी झलक थी। यहां से जाने के बाद रात को सोने से पहले इस मुरली को फिर से पढ़ना, और पढ़कर ही सोना है। अपने मन को जो संकल्प देंगे ना वो करेगा, मन हमारे संकल्पों को माने, शरीर मानेगा। जैसे उस बीज का संकल्प है कि मुझे लाल कलर का फूल बनना है, सारा आकाश एक तरफ नीला, मैं लाल ही बनूंगा, इतनी पावर है उस बीज के संकल्प। अच्छा, ओम शांति।
अपना वतन उड़ो। बाते बनो संपन्न बच्चो, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे,
हमें देते इशारे,
अनुभव से है कहते बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम।